राज ऑल नेशंस गोस्पेल पब्लिशर्स द्वारा। जवान और बूढ़े, पुरुष और महिलाएं अपने जीवन में रहस्य रखना पसंद करते हैं, साथ ही एक दूसरे को रहस्य बताना भी पसंद करते हैं। इस तस्वीर में आप दो छोटी लड़कियों को एक दूसरे से ऐसी बातें कहते हुए देख सकते हैं जो उन्हें लगता है कि कोई और नहीं जानता। एक रहस्य एक ऐसा मामला है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और इसे गुप्त रखा जाना चाहिए। हमारे पास पुरुषों से रहस्य हो सकते हैं, लेकिन भगवान से हम कुछ भी नहीं छिपा सकते। वह हमारे दिलों के गहरे विचारों को जानता है। ऐसा कोई रहस्य नहीं है जो ईश्वर से छिपाया जा सके। मूसा ने कहा, तू हमारे पापों को, हमारे गुप्त पापों को, जहां तू उन्हें देख सकता है, अपने सामने रखता है। भजन संहिता 90:8। परमेश्वर हमारे सब कामों का न्याय करेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा, यहाँ तक कि गुप्त में किए गए कामों का भी न्याय करता है। सभोपदेशक 12:14। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा सबके गुप्त विचारों का न्याय करेगा। रोमियो 2:16। परमेश्वर न केवल मनुष्यों के बाहरी कार्यों का न्याय करेगा, बल्कि उनके सबसे छिपे हुए पापों और गुप्त कार्यों, उनके आंतरिक उद्देश्यों और लक्ष्यों का न्याय करेगा। जो कुछ छिपा है वह खुले में लाया जाएगा और जो कुछ छिपा है वह खुला रहेगा। मरकुस 4:22। जो कोई पत्थर, लकड़ी या धातु की मूर्ति बनाता है और गुप्त रूप से उसकी पूजा करता है, उस पर ईश्वर का श्राप। व्यवस्था विवरण 27:15। व्यभिचारी गोधूली आने की बाट जोहता है, वह अपना मुंह ढाँप लेता है ताकि कोई उसे न देख सके। यूहन्ना 24:15। हम जीवन भर मनुष्यों के सामने अपने बुरे कामों को छिपाने में सफल हो सकते हैं और हमारे गुप्त पापों के प्रकाश में आए बिना मर सकते हैं, लेकिन हम भगवान से बच नहीं सकते। वह दिन निश्चित रूप से आ रहा है जब मृत, छोटे और बड़े परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। मैंने छोटे बड़े सभी मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा। किताबें खोली गईं, फिर एक और किताब खोली गई, जीने की किताब। मरे हुओं का न्याय उनके द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार किया गया, जैसा कि किताबों में दर्ज है। जिस किसी का नाम जीवित की पुस्तक में नहीं लिखा था, उसे आग की झील में डाल दिया गया। प्रकाशित वाक्य 20:12-15। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने गुप्त पापों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करें और जहां आवश्यक हो मनुष्यों के लिए भी। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, क्योंकि यीशु का बहुमूल्य लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1:7। दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह उसे सब छिपे हुए दोषों से छुड़ाए। भजन संहिता 19:12। सब भेदों का ज्ञान केवल परमेश्वर को है। प्रभु के मन को कौन जानता है? कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमारे परमेश्वर यहोवा ने गुप्त रखा है। व्यवस्था विवरण 29:29। अपने प्रेम में उसने अपने बहुत से भेद मनुष्यों पर प्रकट किए, सबसे पहले अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा और फिर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जो अपने पिता और अपने पिता की इच्छा को हम पर प्रकट करने आया था। आमोस 3:7 में हम पढ़ते हैं, प्रभु अपने सेवकों, भविष्यद्वक्ताओं पर अपनी योजना प्रकट किए बिना कभी कुछ नहीं करता है। वह नेक लोगों को अपने भरोसे में लेता है। नीतिवचन 3:32। यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर ने अपने प्रेम के सभी रहस्यों को हम पर प्रकट किया है। आज यह कोई रहस्य नहीं है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह न मरे परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। यह कोई रहस्य नहीं है कि हर एक को एक बार मरना है और उसके बाद परमेश्वर का न्याय करना है। इब्रानियों 9:27। यह कोई रहस्य नहीं है कि हम सबको मसीह के सामने उपस्थित होना है कि उसके द्वारा न्याय किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने शारीरिक जीवन में जो कुछ भी उसने किया है, अच्छा या बुरा, उसके अनुसार वह प्राप्त करेगा। 2 कुरिन्थियों 5:10। यह कोई रहस्य नहीं है कि वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु चाहता है कि सब अपने पापों से फिरें। 2 पत्रस 3:9। सो उसने हमें आज्ञा दी कि तब सब देश देश के लोगों के पास जाकर उन्हें अपना चेला बनाओ। 28:19। यह कोई रहस्य नहीं है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक ही है, और मसीह को हमारी बुद्धि बना दिया। उसके द्वारा हम परमेश्वर के पवित्र लोगों के साथ ठीक हो जाते हैं और स्वतंत्र हो जाते हैं। 13:8 और 1 कुरिन्थियों 1:30। आज लाखों लोग उसके बचाने वाले अनुग्रह की गवाही देते हैं, हमारे सभी पापों को क्षमा करने और हमारे सभी रोगों को ठीक करने की उसकी शक्ति की। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि यीशु ने वह दुख सहा जो हमें होना चाहिए था, वह पीड़ा जो हमें उठानी चाहिए थी। हमारे पापों के कारण वह घायल हो गया था। उसके द्वारा दी गई सजा से हम चंगे हो गए हैं। 53। हम यह भी जानते हैं कि यदि हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लें, वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सभी पापों से शुद्ध करेगा। यीशु का लहू, उसका पुत्र, हमें हर पाप से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1:7-9। यह कोई गुप्त बात नहीं कि परमेश्वर का मेमना यीशु न केवल हमारे पापों को दूर करने आया, वरन हमें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा भी देता है। 3:11। यह कोई रहस्य नहीं है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, कि वह कब्र से फिर से जी उठा और स्वर्ग में चला गया, जहां वह आने वालों को बचाने के लिए अभी और हमेशा सक्षम है, उसके द्वारा परमेश्वर के लिए, क्योंकि वह उनके लिए परमेश्वर से याचना करने के लिए हमेशा के लिए जीवित है। 7:25। वह स्वर्ग में अपने अनुयायियों के लिए जगह तैयार कर रहा है, ताकि हम वहीं रहें जहां वह अनंत काल तक रहेगा। 14:1-3। यह कोई रहस्य नहीं है कि यदि हम धीरज बने रहें, तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। 1 तीमुथियुस 2:12। हम भी निश्चय जानते हैं कि यीशु फिर से आ रहा है। आज्ञा का ललकार, प्रधान स्वर्गदूत का शब्द, परमेश्वर की तुरही का शब्द होगा, और यहोवा आप ही स्वर्ग से उतरेगा। जो मसीह में विश्वास करते हुए मर गए हैं, वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो उस समय जीवित हैं, उनके साथ बादलों पर इकट्ठा होंगे कि हवा में यहोवा से मिलें, और इसलिए हम हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16-17। यह कोई रहस्य नहीं है कि जब अंजीर का पेड़ यहूदी राष्ट्र खिलना शुरू हो गया है और सभी पेड़ अन्य जातियों के लोग पृथ्वी पर अपना शांति का राज्य स्थापित करने के लिए मसीह का आना निकट होगा। हर कोई जानता है कि यह तब से हो रहा है जब से यहूदी राज्य इजराइल की स्थापना हुई है, जबकि गहन राष्ट्रवाद ने कई छोटे और बड़े राष्ट्रों को सरकार में स्वतंत्र कर दिया है। इसलिए हम किसी भी समय उसके लोगों के लिए मसीह के आगमन की अपेक्षा करते हैं। यह हमारे लिए कोई रहस्य नहीं है कि इन अंतिम दिनों में मनुष्य बदतर और बदतर होते जाएंगे। उस समय बहुतेरे अपना विश्वास त्याग देंगे, वे एक दूसरे को धोखा देंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बुराई का प्रसार ऐसा होगा कि बहुत से लोगों का प्यार ठंडा हो जाएगा। इस दुनिया के ईश्वर, जो राष्ट्रों को खोखला कर रहा है, के प्रकट होने की तैयारी में है, उन्हें झूठ पर विश्वास करने का वादा करता है। 24:10-13। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अजगर, वह प्राचीन सांप जो कि इबलीस या शैतान है, जल्द ही जंजीरों में जकड़ा जाएगा और अथाह गड्ढे में डाल दिया जाएगा, ताकि वह तब तक राष्ट्रों को धोखा न दे सके जब तक कि 1000 साल पूरे न हो जाएं। ऊपर प्रकाशित वाक्य 20:2-3। यह कोई रहस्य नहीं है कि यीशु ही एकमात्र मार्ग, सत्य और जीवन है, और उसके बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। 14:6। हम यह भी जानते हैं कि कब्र के पार कोई उद्धार नहीं, कि आज उद्धार का दिन है और वह दिन आ रहा है जिसमें किसी का उद्धार नहीं हो सकता। यह कोई रहस्य नहीं है कि शैतान एक झूठा, धोखेबाज और हत्यारा है, जो आपको उसके और उसके स्वर्गदूतों के लिए तैयार किए गए अनंत नरक में खींचने की कोशिश कर रहा है। यूहन्ना 8:44। सो हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम परमेश्वर से मिलकर लो, उसे अपनी सारी परेशानी बताएं और अपने पापों को स्वीकार करें। वह आपको सभी पापों से शुद्ध करेगा, आप में एक शुद्ध हृदय पैदा करेगा और आपको अपने पुत्र और पुत्री के रूप में स्वीकार करेगा, आपको परमेश्वर का उत्तराधिकारी और मसीह के साथ संयुक्त वारिस बनाएगा। अभी आओ प्रार्थना करो कि तुम कहाँ हो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यदि आप परमेश्वर के अनसुलझे रहस्यों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो परमेश्वर की प्रेरित पुस्तक बाइबल को पकड़ लें। यह आपको वह सब कुछ बताएगा जो आपको अभी और अनंत काल के लिए जानने की जरूरत है। यह कोई रहस्य नहीं है कि परमेश्वर क्या कर सकता है। जो उसने दूसरों के लिए किया है वह आपके लिए करेगा। मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ। चोरी मत करो। पहला पाप जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे दोषी ठहराया वह था चोरी करने का पाप, जो मेरा नहीं था। यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान था जब मुझे बंदी बना लिया गया था और गोली मारने की धमकी दी गई थी। मदद के लिए भगवान से रोते हुए उन्होंने पहले मुझे मेरे पापों के लिए दोषी ठहराया। एक दिन जेल की पूरी कोठरी परमेश्वर के तेजोमय प्रकाश से भर गई। उस अद्भुत प्रकाश में मुझे बचपन में ही मेरे सारे पाप दिखा दिए गए थे। भगवान ने मुझे उस समय की याद दिला दी जब लगभग 6 साल के छोटे लड़के के रूप में मैंने पैसे का एक छोटा सिक्का लिया था जो मेरा नहीं था। जब हम खेल रहे थे तब एक और लड़का, मेरा एक साथी, 2.5 सेंट खो चुका था। मुझे पता था कि सिक्का कहाँ लुढ़क गया था, लेकिन उसने उसे नहीं बताया। बाद में मैंने जाकर पैसे उठाए और अपने लिए कुछ मिठाइयाँ खरीदी। परमेश्वर की दृष्टि में मैंने चोरी की थी और चोरी करना पाप है। मैं इसके बारे में लंबे समय से भूल गया था, लेकिन भगवान नहीं भूले और मुझे याद दिलाया और मुझे दिखाया कि भगवान की दृष्टि में कितनी बदसूरत चोरी है, जिन्होंने कहा चोरी मत करो। निर्गमन 20:15। उसने मेरे और सब पाप जो बहुत थे मुझे दिखाया, परंतु पहला पाप जिसका मैं परमेश्वर के सामने दोषी पाया गया वह था चोरी का पाप। हालांकि यह एक छोटी सी राशि थी, लेकिन मेरे साथ खेलने वाले के लिए यह बहुत कुछ था जो कुछ उसके पास था, और परमेश्वर ने उसे अपनी पुस्तक में लिखा जहां हमारे सभी पाप दर्ज हैं, न्याय के दिन खुले तौर पर पढ़ने के लिए। मैंने अपने अन्य सभी पापों के साथ इस पाप को स्वीकार किया और क्षमा मांगी। मैं जानता था कि यह पाप अन्य सभी के साथ मिलकर मुझे नरक में ले जाएगा। जैसा कि मैं किसी भी दिन गोली मारने की उम्मीद कर सकता था, यह सोचना भयानक था कि मुझे एक अनंत नरक में जाना है जहां आग कभी नहीं बुझी और कीड़े कभी नहीं मरते। मरकुस 9:48। घंटों तक मैं क्षमा के लिए परमेश्वर से चिल्लाता रहा। अचानक यीशु सूली पर लटके हुए मेरे सामने प्रकट हुए। मैं उसके सिर पर कांटों का ताज और उसके हाथों और पैरों में क्रूर नाखून देख सकता था। उसके ऊपर आने वाले सभी दर्द और दुख के कारण उसका चेहरा मुड़ा हुआ और विकृत हो गया था। उसके घावों से खून बह रहा था। उनके लहू को विस्मय से देखते हुए मुझे अचानक एहसास हुआ कि उनके बहुमूल्य लहू से मेरे सारे पाप धुल गए। मैं जानता था कि मेरे सभी पाप यीशु के लहू के द्वारा क्षमा किए गए थे। यीशु का लहू, उनका पुत्र, हमें हर पाप से शुद्ध करता है। 1 यूहन्ना 1:7। परमेश्वर की शांति और आनंद मेरे हृदय में उतर आया। परमेश्वर ने मुझे मेरे पापों से और कैद से मुक्त कर दिया कि उसकी सेवा करने के लिए, जीवित परमेश्वर। उसने मुझे और चोरी न करने में मदद की। पहला पाप। मनुष्य द्वारा किया गया पहला पाप चोरी का कार्य था। आदम और हव्वा के पास फिरदौस में खाने के लिए बहुत से बेहतरीन फल थे। जीवन के अद्भुत वृक्ष के अलावा सैकड़ों फलों से लदे पेड़ों ने उन्हें घेर लिया, जिससे वे स्वतंत्र रूप से खा सकते थे। परमेश्वर के पास केवल एक ही वृक्ष था, वह वृक्ष जो जीवन देता है और वह वृक्ष जो ज्ञान देता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। उत्पत्ति 2:9-17। शैतान ने, जो चोर और हत्यारा है, हव्वा को समझा दिया कि वह चोरी करे जो उसका नहीं है। यह मनुष्य द्वारा की गई अब तक की पहली चोरी थी। इसने आज तक परमेश्वर से अलगाव, अनकहा दुख और मानवता के लिए मृत्यु को लाया। चोरी के पाप का जनक स्वयं शैतान है। इसलिए चोरी करना, चाहे वह किसी भी रूप में हो, शैतान के साथ साझेदारी है, जिसे यीशु ने चोर और हत्यारा और झूठा कहा। यूहन्ना 10:10। भगवान ने कहा, चोरी मत करो। निर्गमन 20:15। उसने अपने लोगों से यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी गाय या भेड़ को चुराकर उसे मार डाले या बेच दे, तो उसे एक गाय के बदले 5 गाय और एक भेड़ के बदले 4 भेड़ें देनी होंगी। निर्गमन 22:1। आपने कभी गाय या भेड़ की चोरी नहीं की होगी, लेकिन आपने कई अन्य चीजें चुराई हैं, शायद कपड़े, साबुन, चीनी, भोजन, पैसा, आभूषण, औजार, मुर्गी, फल, आलू, कद्दू, भोजन, उपकरण, साइकिल, कार या ऐसी कोई भी चीज जो आपकी नहीं है। हो सकता है कि आपने इसे मालिक से उधार लिया हो, बिना किसी इरादे के इसे फिर से वापस करने का कोई इरादा नहीं है। यह भी चोरी करने जैसा ही है। आपने कभी भी इसके लिए भुगतान करने का इरादा किए बिना फर्नीचर, कपड़े या कुछ भी उधार पर खरीदा होगा। यह भी चोरी करने का एक और तरीका है। हो सकता है कि आप किसी को बहुत सी चीजें रखते हुए देखें, जिसकी आपको जरूरत है, और आप सोचते हैं कि अगर आप इसे लेते हैं, तो वह इसे याद नहीं करेगा। भगवान के सामने यह भी चोरी और पाप है। शायद एक अन्य जाति के रूप में आप एक खतना स्कूल में थे और इसे गलत न देखकर कद्दू, मीली या यहाँ तक कि एक भेड़ को भी चुरा लिया। हालांकि भगवान इसे चोरी कहते हैं। शायद आप खुद को ईसाई कहते हैं और फिर भी आप लगातार उन चीजों को लेते हैं जो आपकी नहीं है, शायद अपने मालिक या मालकिन से, अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदारों से या अजीब लोगों से। चीजों को उनके वास्तविक मूल्य से अधिक बेचना लोगों की जेब से पैसे चुराने का एक और तरीका है। यहाँ चोरी के कई तरीकों का वर्णन करने में बहुत समय लगेगा। यह जानना काफी है कि भगवान ने कहा, चोरी मत करो। मैं कुछ और धर्म ग्रंथों को उद्धृत करके अपनी बात समाप्त करता हूँ, ताकि यह दिखाया जा सके कि चोरी के बारे में भगवान का क्या कहना है। चोरी या धोखा या झूठ मत बोलो। उसे लूटने के लिए किसी का फायदा न उठाएं। जिस व्यक्ति को आपने काम पर रखा है, उसकी मजदूरी को एक रात के लिए भी न रोके। लेवे व्यवस्था 19:11-13। स्वामी अपने सेवकों की मजदूरी न देने पर चोरी के दोषी हैं। जो कोई किसी मनुष्य का अपहरण करे, या तो उसे बेचने के लिए या दास के रूप में रखने के लिए, वह मार डाला जाए। निर्गमन 21:16 और व्यवस्था विवरण 24:51। एक इसराइली आकान ने उन वस्तुओं में से एक सुंदर लबादा, चांदी और सोना चुरा लिया, जिन्हें परमेश्वर ने यरीहो के आक्रमण के समय नष्ट करने की बात कही थी। परमेश्वर ने इसराइल के पूरे गोत्र को उसके पाप के लिए दोषी ठहराया और उन्हें चोरी करने के लिए दोषी ठहराया। वे एक के खिलाफ लड़ाई हार गए। आकान की चोरी के पाप के कारण 36 व्यक्ति मारे गए। और आकान के चोरी के पाप का पता चला और सब इसराइलियों ने उसको और उसके पुत्रों और पुत्रियों और गधों और भेड़ बकरियों और जो कुछ उसका था पत्यर्वाह किया। तब यहोवा क्रोधित नहीं हुआ। यहोशू 7। अबशालोम ने इसराइलियों के मन और उसके द्वारा अपने धर्म प्रायण पिता दाऊद से राज्य को चुरा लिया, लेकिन वह मारा गया। चापलूसी या रिश्वत से लोगों का दिल चुराना पाप है और भुगतान नहीं करता है। 2 शमूएल 15 पद 6। अनैतिक स्त्री पुरुषों का दिल चुरा लेती है यह कहकर कि चोरी का पानी मीठा होता है। वे उन्हें नर्क की गहराई तक ले जाते हैं। ऐसे ही अनैतिक पुरुष भी हैं जो दूसरे पुरुषों की पत्नियों को चुराते हैं, घरों को तोड़ते हैं और खुद पर दुख और न्याय लाते हैं। नीतिवचन 9:13-18। चोरी करने से अक्सर हत्या और मौत हो जाती है। यिर्मयाह 7:9। यदि कोई चोर किसी घर में सेंध लगाते हुए पकड़ा जाए और मार डाला जाए तो उसके घात करने वाले हत्या के दोषी न ठहरे। निर्गमन 22:2। यहोवा पर दोष है कि वह इस देश के रहने वालों पर दोष लगाए। इस देश में कोई सच्चाई या प्रेम नहीं है और लोग मुझे अपने भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। वे वादे करते हैं और उन्हें तोड़ देते हैं। वे झूठ बोलते हैं, हत्या करते हैं, चोरी करते हैं और व्यभिचार करते हैं। होशे 4:1-2। हर एक चोर देश से निकाल दिया जाएगा। यहेजकेल 5:3-4। पाप के लिए चोरी उसकी मजदूरी मृत्यु का भुगतान करता है। रोमियो 6:23। अभी पिछले सप्ताह एक मनुष्य ने एक भेड़ चुराकर उसे मार डाला और लोथ को उस थैले में डाल दिया जिसे उसने अपनी साइकिल के पीछे बांधा था। जैसे ही वह साथ चल रहा था, भेड़ का एक पैर बैग के माध्यम से साइकिल के पहिए में जा घुसा। चोर गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। चोरी के कार्य में सैकड़ों और हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है या ऐसा करने का इरादा किए बिना हत्यारे बन गए हैं। हो सकता है कि आप वर्षों से चोरी कर रहे हों बिना पता लगाए, लेकिन सुनिश्चित करें कि आपका पाप आपको खोज लेगा। यीशु ने कहा, जो कुछ छिपा है वह खुले में लाया जाएगा और जो कुछ छिपा है वह खुल जाएगा। मार्क 4:22। लालच चोरी की ओर ले जाता है जब तक कि हम ईश्वर के उपहार और आशीर्वाद की इच्छा न करें। लोभ को मूर्ति पूजा कहा जाता है क्योंकि वह इस संसार की वस्तुओं से एक ईश्वर बनाता है। कुलुस्सियों 3:5। परमेश्वर ने कहा, किसी दूसरे के घराने की इच्छा न करना, उसकी पत्नी, उसके दासों, उसके मवेशियों, उसके गधों व किसी अन्य वस्तु का जो उसका स्वामी हो उसकी इच्छा न करना। निर्गमन 20:17। यीशु ने कहा कि लोभ और चोरी हृदय से हत्या, व्यभिचार, घमंड और छल के साथ ही निकलते हैं। मरकुस 7:21-23। यदि आप चोरी की इच्छा और आदत से मुक्त होना चाहते हैं तो अपना हृदय परमेश्वर को दे दे और वह आपको अपने प्रेम और पवित्र आत्मा से भरा एक नया और स्वच्छ हृदय देगा। वह तुम्हें चोरी करने की आदत से मुक्त करेगा। क्या किसी व्यक्ति के लिए भगवान को धोखा देना सही है? परमेश्वर इसराइलियों को उनकी आय का दसवां भाग न देकर उन्हें धोखा देने के लिए दोषी ठहराता है। उसने कहा, तुम सब पर श्राप है क्योंकि सारा देश मुझे धोखा दे रहा है। अपने दशमांश की पूरी राशि मंदिर में लाओ। मैं स्वर्ग के खिड़कियां खोलूंगा और सब प्रकार की अच्छी वस्तुएं तुम पर बहुतायत से उंडेलूंगा। कृपया पढ़ें। मलाकी 3:7-12। हमारी आय का दसवां हिस्सा हमारा नहीं बल्कि ईश्वर का है। आइए हम इस बात से भी सावधान रहें कि हमने जो किया है उस पर घमंड करके परमेश्वर का सम्मान चुराने का दोषी न पाया जाए। प्रेरितों के काम 12:21-23। रोमियो 13:8-10 में हम पढ़ते हैं, किसी के प्रति दायित्व में न रहो, केवल एक ही दायित्व है कि आप एक दूसरे से प्रेम करें। व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, जो किसी और का है उसकी इच्छा मत करो। अपने पड़ोसी से वैसे ही प्यार करो जैसे तुम खुद से करते हो। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके साथ कभी गलत नहीं करेंगे। यीशु ने कहा, मांगो तो पाओगे, खोजो और तुम पाओ, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। मत्ती 7:7। उसके राज्य की चिंता करो और वह तुम्हें ये वस्तुएं, भोजन और वस्त्र प्रदान करेगा। लूका 12:22-31। कई पुरुष और महिलाएं जिन्होंने कभी काम नहीं किया है लेकिन जो कुछ भी वे कर सकते हैं चोरी करके जीते हैं, वे आज ईमानदार धनी ईसाई हैं। उन्होंने अपने पापों को परमेश्वर और मनुष्य के सामने स्वीकार कर लिया है, जहां वे चोरी की गई चीजों को चुका सकते थे। परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया और उन्हें नया हृदय और नई आत्मा, सत्य का पवित्र आत्मा दिया। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, शैतान को अवसर मत दो। जो आदमी चोरी करता था उसे चोरी करना बंद कर देना चाहिए और काम करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि वह ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर सके और गरीबों की मदद कर सके। इफिसियों 4:27-28। यीशु को अपने दिल और घर में आने दो और तुम्हें और चोरी नहीं करनी पड़ेगी। जब यीशु एक चुंगी लेने वाले जक्कई के घर में आया जिसने लोगों से अधिक कर वसूल कर चुरा लिया, तो जक्कई ने कहा, सुनो श्रीमान, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और अगर मैंने किसी को धोखा दिया है तो मैं उसे 4 गुना अधिक वापस कर दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। लूका 19:1-10 तक। लोभ और चोरी मनुष्य के हृदय से निकलती है। यदि आप पाप और चोरी की आदत से मुक्त होना चाहते हैं तो अपना हृदय यीशु को दें। वह तुम्हें अपने प्रेम से भरा एक नया हृदय देगा और वह तुम्हें स्वतंत्र करेगा।